الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک مسلم. رمضان المبارک کی آج 11ویں رات، اور رمضان المبارک کے متعلق ہم پچھلی چند راتوں سے ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے ساتھ محبت کا ہاتھ بڑھا دیا. اللہ تعالیٰ نے مومن کو محبت کے پیغام بھجوا دیے، چنانچہ محبت کے چار پیغام بھجوائے. پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ مومن کی طرف محبت کی نگاہ فرماتے ہیں. دوسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں. تیسرا، کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اور چوتھی محبت کی بات، کہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں. تو چار بڑی نعمتیں اور چار طریقے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ محبت کا پیغام بھجواتے ہیں، اور محبت کا اصول یہی ہے کہ اگر ایک طرف سے پیغام آیا تو دوسری طرف سے بھی پیغام آنے کا انتظار ہے، اور اللہ رب العزت بھی ہماری اس محبت کا جذبہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کے جذبے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کے جذبے کو دیکھ رہے ہیں. تو محبت کا جذبہ دکھانے کے لیے چند چیزیں پچھلی 10 راتوں میں 10 مختلف چیزیں بیان کی گئیں، کہ ایک محبت کا جذبہ دکھانے کا طریقہ یہ کہ انسان رات کا قیام کرے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان سخاوت کرے، کہ سخاوت سے بھی انسان اللہ کو اپنی محبت دکھاتا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جھوٹ اور غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، اور ایک طریقہ اللہ کو محبت کا پیغام دینے کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے حیائی سے بچائے. تو چند چیزیں پچھلی ہر رات میں رمضان المبارک کی، کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز جو اللہ کو انسان اپنی محبت کا جذبہ دکھا سکتا ہے. آج کی رات میں بھی رمضان المبارک میں اللہ کو محبت دکھانے کا جذبہ اور اللہ کو محبت دکھانے والی ایک چیز اور بیان کرنے کا ارادہ، اور وہ ہے استغفار کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دو چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کو رمضان میں راضی کر سکتے ہو، ایک ہے استغفار اور ایک ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا. تو انسان استغفار کرتا ہے، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، اور استغفار کرنا ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم معافی مانگو اپنے رب سے، استغفار کرو اپنے رب سے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. تو جو بھی استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے گناہ پہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے معافی دینے کا वादा फरमा लिया, और रमजान में ये इस्तगफार करना, ये और ज्यादा अल्लाह को अपनी मोहब्बत का जज्बा दिखाना है। सच्ची बात यह है, ये जो माफी मांगने वाला शख्स है, ये कायनात का बेहतरीन इंसान है। जो ज्यादा माफी मांगता है वही दुनिया का सबसे अच्छा इंसान। नबी अलैहि सलात वसलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लू बनी आदम खत्ता, जितने भी आदम अलैहि सलात वसलाम की औलाद हैं सब के सब खताकार हैं। व खैरुल खताइन अत्तवाबून, और इन खताकारों में सबसे बेहतरीन वो हैं जो सबसे ज्यादा तौबा करने वाले हैं। तो इस कायनात के बेहतरीन लोग वो जो तौबा करने वाले हैं। सच्ची बात तो ये है कि ये नमाज का असल मकसद भी अल्लाह के सामने माफी मांगना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा इकराम ने पूछा कि ये नमाज क्या है? आपने फरमाया, नमाज इस्तग़फ़ार और दुआ है। नमाज के यही दो जुज हैं, इंसान के अल्लाह के सामने माफ़ी मांगे, आजजी करे, और दूसरा अल्लाह से अपनी दुआ अल्लाह के सामने रखे। इतना अल्लाह को ये इस्तग़फ़ार अमल पसंद है कि इस्तग़फ़ार गुनाह के बाद तो इंसान करे ताकि उसके गुनाह माफ़ हो जाए, मगर नेकियों के बाद भी इस्तग़फ़ार ही करने का हुक्म है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत के आप हर नमाज के बाद 3 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते थे। और इसी तरह हज जैसा बड़ा अमल कि जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाजी इस तरह गुनाहों से पाक लौटता है जैसे उस दिन लौटा था जब उसकी वालदा ने उसको जना था। तो इतना पाक है, इतना बड़ा अमल कर चुका, मगर कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सुम्मा अफीजु मिन हैसु अफाज़ अन्नास वस्तग़फिरुल्लाह, कि जब तुम हम हज से लौटो लोगों के साथ तब भी तुम इस्तग़फार करो। तो देखें, गुनाहों के बाद तो इस्तग़फार करना ही है, मगर अल्लाह को यह इस्तग़फार इतना पसंद, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नेकियों के बाद भी इस्तग़फार करो। बल्कि अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक फरमा दिया, जब तुमको दीन में बड़ी फतह हासिल हो, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, कि तुमको जब फतह हो, अल्लाह की मदद हो, लोग खूब दीन में आ रहे हो, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, उस वक्त भी अल्लाह की पाकी बयान करो और इस्तग़फार करो। तो अल्लाहु अकबर, ये इस्तग़फार सिर्फ गुनाह के बाद का अमल नहीं, गुनाह के बाद तो करना ही है, गलती जो कर बैठे माफी तो मांगनी है, ये बड़ी नेकी है। नेकियों के बाद भी यही अमल करना है। चुनाचे मशाइख का कौल ये है कि जिसने किसी नेक अमल के बाद खूब इस्तग़फार किया तो अल्लाह ताला उसको वो नेक अमल करने की बार बार तौफीक अता फरमाएंगे। इसलिए मशाइख ने इस्तग़फार की 5 बड़े फवायद लिखे हैं, अल्लाह से माफी मांगने के 5 बड़े फवायद। और पहला फायदा ये है कि अस्तग़फार करने से अल्लाह ने गुनाह का मग़फ़िरत का तो वादा कर लिया, जो अस्तग़फार ज़्यादा करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे गुनाहों से बचा भी लेते हैं। तो ये गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया भी है, गुनाहों से बचने का ज़रिया भी है। इसीलिए जो बंदा इस्तग़फार करता है शैतान की कमर को तोड़ देता है, शैतान उसके पीछे छोड़ देता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शैतान कहता है, अहलकतुन्नास बिज़्ज़ुनूब, मैंने लोगों को हलाक कर दिया गुनाहों के जरिए से, वह अहलिकूनी बिला इलाहा इल्लल्लाह वल इस्तग़फार, और लोगों ने मुझे हलाक कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के साथ और इस्तग़फार करने के साथ। तो जो शख्स खूब इस्तग़फार करता है अल्लाह ताला उसको गुनाहों से बचा लेते हैं। कई मरतबा लोग कहते हैं जी मैंने बड़े बड़े गुनाह किए, अस्तगफार तो 1 मिनट की चीज है, इतनी थोड़ी सी तौबा करूंगा, इतना थोड़ा सा अस्तगफार करूंगा, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे। थोड़े से भी करने की जरूरत नहीं है, इंसान दिल ही दिल में शर्मिंदा होता है, अपने दिल में कहता है कि या अल्लाह मैंने गलत कर दिया, इतना ही अल्लाह को काफी है। उसने वाकई शर्मिंदगी नदामत का इजहार कर दिया, इस पर ही अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। आजकल कंप्यूटर का दौर है, कंप्यूटर में एक डिलीट बटन होता है, इतना छोटा सा कंप्यूटर, उसमें छोटा सा डिलीट का बटन होता है, इतने छोटे से कंप्यूटर में इतनी बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं, मेगाबाइट्स में और गीगाबाइट्स में, और अब तो टेराबाइट आ गया, इतनी बड़ी फाइल कि उनका प्रिंट आउट निकालें तो बड़े बड़े कमरे भर जाएं। और इतनी बड़ी फाइलों को डिलीट करने के लिए सिर्फ एक डिलीट का बटन दबाते हैं, पूरी फाइल डिलीट। और इसी तरह मोमिन की बड़ी बड़ी फाइलें गुनाहों की होती हैं, एक बटन इस्तगफार का, तौबा का दबाया, अल्लाह ताला सारी फाइल डिलीट कर देते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये इस्तगफार जो है ये गुनाह से मग़फ़िरत का भी जरिया और गुनाह से बचाव का भी जरिया है। अमेरिका में एक नौजवान था, उसने सोचा कि जी मुझसे बदनजरी हो जाती है, तो खूब अल्लाह से इस्तगफार करता, हर रोज खूब अल्लाह से माफी मांगता, मगर इंसान जो हुआ, और इंसान गलतियों का पुतला है। कहने लगा खूब इस्तगफार किया और पाबंदी से इस्तगफार किया, अल्लाह ताला ने दिल में डाला ऐसा हल कि गुनाहों से बच गया। कि मैंने सोचा कि मैं करता क्या हूं, तो जहन में आया कि जी ज्यादा जो बदनजरी होती है वो घर पे नहीं ऑफिस में होती है, और ऑफिस में अपने टेबल पे नहीं, जब अपने टेबल से उठ के कहीं और जाता हूं तो बदनिगाही होती है। तो अल्लाह ने दिल में डाला कि अपने टेबल पे जब बैठूं तो चश्मा उतार दूं, चश्मा उतार के ऑफिस में घूमता तो कोई भी नजर ना आता, और जब अपने टेबल पे बैठता तो आराम से कंप्यूटर देख लेता। इस तरह अल्लाह ताला ने इस गुनाह से निजात नसीब फरमा दी। तो जब बंदा इस्तगफार करता है, जब बंदा इस्तगफार करता है तो अल्लाह ताला गुनाहों को माफ भी कर देते हैं और गुनाहों से हिफाजत भी फरमा देते हैं। इस्तग़फ़ार का दूसरा फ़ायदा ये है कि जब बंदा इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल से डर खौफ ख़त्म कर देते हैं, ये भी बड़ी चीज़ है। हदीस पाक में आता है, मन लम यख़िफ़िल्लाह अख़ाफ़हुल्लाह मिन कुल्ली शय। जब कोई शख्स अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह ताला हर चीज़ का डर उसके दिल में डाल देते। और जो बंदा कसरत से इस्तगफार करता है वो अल्लाह को बड़ा समझता है, अल्लाह से डरता है, फिर तो अल्लाह ताला हर चीज का डर उससे खत्म कर देते हैं। इसलिए हदीस पाक में आता है कि मन लजिम अल इस्तगफार, कि जो इस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, जअलल्लाहुल्लहू मिन कुल्ली ज़ीक़िन मखरजा, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी में से रास्ता निकाल देते हैं, वह मिन कुल्ले हम मिन फरजा, उसको हर गम में से निजात देते हैं, वह रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब, उसको वहां से रिस्क देते हैं जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। तो जो बंदा इस्तग़फार करता है अल्लाह ताला उसको हर तंगी में से निकाल देते, कुव्वत अता फरमा देते हैं। तो इस्तग़फार के 5 बड़े फायदे उलमा ने लिखे, एक ये कि गुनाह से मग़फ़िरत और गुनाह से बचाओ, اور دوسرا یہ استغفار کے ذریعے سے انسان کی قوت بڑھ جاتی ہے، دل کے اندر ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے، جس کو ڈپریشن کہتے ہیں نا، یہ ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے کثرت استغفار کرنے والے کو. اور تیسری چیز، استغفار کرنے والے کو اللہ کا خاص قرب ملتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ استغفار کرنے والے کا دل چمک اٹھتا ہے، اور ایک حدیث میں آیا ذکر اللہ ہی شفاء القلوب، کہ جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، چاہے وہ استغفار ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس کے دل کو شفا مل جاتی ہے، ہر غیر کی محبت سے دل خالی ہو جاتا ہے، ایک اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے. ایسی یہ چیز ہے استغفار، شیطان کو بھگا دیتی ہے، گناہوں کو توڑ پھوڑ دیتی ہے، انسان کے دل کے ڈر خوف کو ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کے بالکل قریب کر دیتی ہے. تو ہے تو یہ ایسی چیز، یوں سمجھ لیں کہ اللہ کا ولی بننے کی یہ اوپن سیکرٹ ہے. اس لیے حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، یہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمتہ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ کسی شخص نے حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر دنیا میں اللہ والے ختم ہو جائیں، خدا نخواستہ کوئی ایسا وقت ہے کوئی اللہ والا نہ رہے، اور ایک شخص ہو اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہو کہ میں اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا مقرب، اللہ کا ولی بنوں، تو اب وہ کیا کرے؟ کیونکہ اللہ کا ولی بننے کے لیے تو اللہ والوں کی صحبت میں جانا ہوتا ہے. تو خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، اور آپ نے فرمایا کہ جو کثرت سے استغفار کرے گا وہ بھی اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے گا. تو یہ ایسی چیز استغفار، یہ ایسی اوپن سیکرٹ ہے اللہ کا ولی بننے کی. اللہ اکبر. اسی لیے جتنے بھی اللہ والے ہیں انہوں نے خوب استغفار کیا اور دن رات استغفار کیا، سارا وقت اللہ سے معافیاں مانگی. تو جب تک اللہ کے سامنے پوری طرح سے سرنڈر نہیں کریں گے تب تک اللہ کا قرب ملنا مشکل ہے. تو پانچ بڑے فوائد علماء نے لکھے استغفار کے، اور پہلا فائدہ کہ جو شخص استغفار کثرت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت بھی فرماتے ہیں، گناہ سے بچا بھی لیتے ہیں، اور دوسرا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی قوت میں اضافہ کرتے ہیں، دل کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے، اور تیسرا یہ کہ استغفار کرنے والا اللہ کا مقرب بن جاتا ہے. اور چوتھی چیز کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ بلندی حاصل ہوگی شہرت کے ساتھ، اور بلندی حاصل ہوگی جب میں باس بن جاؤں گا. بلندی حاصل کرنی ہے انسان استغفار کرے، کیونکہ استغفار جب انسان کرتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ میں غلطیوں والا ہوں، اللہ کو یہ کہہ رہا تو میں غلطیوں والا ہوں، میں گناہوں والا ہوں، مجھے معاف کر دے میرے رب. اور ایسا کہنے میں عاجزی ہے، اور عاجزی کرنے والے کے ساتھ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، آپ نے فرمایا من تواضع للہ، جس نے عاجزی کی اللہ کے لیے رفعہ اللہ، اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے ولی گزرے ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور ان کے شہر میں एक मरतबा कहत आ गया, लोग परेशान थे, पानी बिल्कुल नहीं, बारिशें खत्म, सारा जो खाने पीने की अशिया सब खत्म, लोग परेशान, अमवात होती जा रही हैं। लोगों ने जाके उलमा से पूछा कि क्या हल है। उलमा में से किसी ने कहा कि लगता है कि अल्लाह का कोई बड़ा गुनाहगार बंदा हमारे शहर में है, जिसके गुनाह की ये नहुसत है कि ये मामला हमारे साथ हो गया। ये बात हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची, और जुनैद बगदादी तो सुल्तानुल औलिया, अल्लाह वालों में भी बड़े हैं। उन तक जब ये बात पहुंची कि जी शहर में कोई बड़ा गुनाहगार है जिसकी वजह से ये नहुसत है, आपने ये बात सुनते ही खुद शहर से बाहर आ गए और बाहर आके हाथ बुलंद किए कि ए अल्लाह, जो शहर का सबसे बड़ा गुनाहगार था वो शहर से बाहर आ गया, मेरे मालिक अब अपनी रहमत की बारिश बरसा दे। अल्लाह अकबर, उन्होंने ये आजिज़ी की और अल्लाह ने अपनी रहमत की बारिश क्या बरसानी थी, अल्लाह ने अपनी सारी रहमत इस जुनैद बगदादी पे बरसा दी। अल्लाह ताला ने उसी वक्त इल्का किया कि मेरे बंदे, हमने तुझको अपने सबसे मुकर्रब तरीन लोगों में शामिल कर लिया। तो ये इस्तग़फार ऐसी चीज़ जो इंसान की इज्जतों में इजाफा फरमाने की वाली चीज। तो पांच बड़े फायदे उलमा ने लिखे इस्तग़फार के, और पहला फायदा ये कि जो इस्तग़फार कसरत से करता है अल्लाह ताला उसको गुनाहों से बचाते हैं, और जो इस्तग़फार करता है अल्लाह ताला उसकी कुव्वत में इजाफा करते हैं, और जो इस्तग़फार कसरत से करता है अल्लाह ताला उसको अपना खास कुर्ब देते हैं, और जो इस्तग़फार करता है अल्लाह ताला उसको बुलंदियां देते हैं। ये अल्लाह से जो माफी मांगना है ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह अकबर। इसीलिए जो पांचवी चीज बुजुर्गों ने, मशायख ने फरमाई कि जो भी इस्तग़फार करता है उसे खुशखबरियां मिलती हैं। नबी अलैहिस्सलातु वसलाम ने फरमाया, तूबा, खुशखबरी है उसके लिए, लिमन वुजिदा फी सहीफती ही इस्तग़फारन कसीरा, तो उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसके नामाए आमाल में ज्यादा इस्तग़फार है। तो जो शख्स ये चाहे कि मुझे खूब खुशखबरियां मिलें, तो उसे चाहिए कि खूब इस्तग़फार करे। ये आप टेस्ट करके देखें, जितना ज़्यादा अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे उतना ज़्यादा दिल सुकून में होगा, उतना हर तरफ से खुशी की खबर आएगी। इसीलिए मशायख ने आज के इस वक्त में जब ये वायरस पूरी दुनिया में आया है, हर बुजुर्ग यही फरमा रहे हैं कि जी इस्तग़फार ज़्यादा करें। तो आज इस्तग़फार करने की ज़रूरत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में एक शख्स था जिसने ज़िंदगी भर गाना गाया और गुनाह जो है वो नहीं किए, पूरी ज़िंदगी गाना गाया और पूरी ज़िंदगी गुनाह किया, इबादत नहीं की। बूढ़ा हो गया, दांत भी गिर गए, आवाज़ भी वैसी ना रही, घर के लोग भी दुनिया से चल बसे, बूढ़ा था और अकेला था, और जिसके यहाँ रह रहा था उसने भी निकाल दिया कि बहुत खांसता है, बीमार है। तो पूरी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी की, इबादत की तरफ तवज्जो नहीं की, और अब जब कोई ठिकाना नहीं था, कोई जगह नहीं थी, बुढ़ापा था और आवाज भी खत्म हो गई थी, तो पहले तो आवाज थी तो माल पैसा भी मिलता था, अब आवाज भी ना रही, जवानी भी ना रही, पहली मर्तबा अल्लाह की तरफ तवज्जो गई, या अल्लाह मैंने तुझे नाराज किया। तो इस गम में चलता चलता खुद ही कब्रिस्तान पहुंच गया कि मैं कब्रिस्तान चला जाता हूं, अब मेरी वही जगह है। और वहां जाके अल्लाह के सामने रोया, पहली मर्तबा माफी मांगी, जिंदगी भर गुनाह किया, पहली मर्तबा माफी मांगी। और क्योंकि दिन कुछ हो गए थे, सही तरह से खाया नहीं था, रोते रोते अल्लाह से कहता है, मेरे मालिक माफी मांग रहा हूं, भूखा हूं, भूख खाने को भी कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर, उस अल्लाह की रहमत को देखे, पूरी जिंदगी नाफरमानी करता रहा, और अल्लाह ताला से कहता है, माफी मांगता है और कहता है, या अल्लाह भूख लगी है। अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह अनु को, ख्वाब में सो रहे थे, ख्वाब में उनको आवाज आया, ए उमर, मेरा एक दोस्त इस कब्रिस्तान में बैठा भूखा है, इस दोस्त के लिए खाना ले जा। हजरत उमर नींद से बेदार हुए, बीवी से कहा, जो कुछ है अभी दो। खाने की हांडी सर के ऊपर रख के लेके गए कि अल्लाह का कोई दोस्त है जिसके लिए खाना लेके जाना है। कब्रिस्तान में पहुंचे तो वो नजर आया, बूढ़ा बूढ़ा भी डर गया कि उमर आ गए, और उमर तो मुझसे नाराज होंगे, मैंने जिंदगी भर गाना गाया। तो भागने लगे तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने रोक दिया कि रुक जा, तुझे डांटने के लिए नहीं आया, तेरे लिए अल्लाह ने खाना भेजा है। कि अल्लाह ने कहा, मेरा एक दोस्त है कि जिसने खाना नहीं खाया उसे खाना दिया। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह से माफी मांगने वाला, अल्लाह ताला उसको इज्जतें भी देते हैं, उसकी तरफ मोहब्बत का हाथ भी बढ़ाते हैं। हमें भी चाहिए कि रमजान के इस मुबारक महीने में खूब अस्तगफार करें। अल्लाह ताला हमें अपने हमने हमें अल्लाह ताला हमें अपने माफ़ किए हुए बंदों में शामिल फरमाए, और इस मुबारक महीने को अल्लाह ताला हमारे लिए मगफिरत का ज़रिया बनाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान का ये जो दूसरा अशरा है, ये तो मगफिरत का अशरा है। अल्लाह ताला इस मगफिरत के अशरे में हमारी भी मगफिरत फरमाए। आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए सब हजरात आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं। थोड़ी देर के लिए अपने दिलों में अल्लाह को याद कर लें, आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। अपने किसी अमल पे सहारा ही नहीं है, अपने किसी अमल पे सहारा ही नहीं है, तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है, तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है। हर जाविये से देखा जहां तक नजर गई, हर जाविये से देखा जहां तक नजर गई, रहमत का उसकी कोई किनारा ही नहीं है, रहमत का उसकी कोई किनारा ही नहीं है, तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है, गाफिल किया है ऐसा हवस ने जहान की, गाफिल जहान की जो सांप नफ्स का है वो मारा ही नहीं है, जो सांप नफ्स का है वो मारा ही नहीं है, तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है, अपने किसी अमल पे सहारा ही नहीं है, तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है। रसूलुल्लाह, दुआ कर लीजिए। सुभान रब्बी लाल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आल सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए अल्लाह, हम आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, हमारे ऐबों की पर्दापोशी फरमा, अल्लाह बुरे दिन से महफूज फरमा, अल्लाह बुरी रात से महफूज फरमा, मेरे मालिक बुरे कामों से महफूज फरमा, ए अल्लाह हमें बुरे अंजाम से महफूज फरमा, मेरे मालिक इस मुबारक महीने में आप हजारों लाखों की हर रात मग़फ़िरत फरमाते हैं, अल्लाह आपके महबूब ने फरमाया हर हर रात में आप लाखों करोड़ों की मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमाते हैं, है मेरे मालिक आज की इस रात में हमारी भी तौबा को कबूल फरमा, अल्लाह जो गुनाह दिन में किए उन्हें माफ़ फरमा, अल्लाह जो गुनाह रातों में किए उन्हें माफ़ फरमा, जो गुनाह छुप के किए अल्लाह उन गुनाहों को भी माफ़ फरमा, ऐ मेरे मालिक, जो गुनाह महफिलों में किए अल्लाह उन गुनाहों को भी माफ़ फरमा। अल्लाह जो गुनाह जाहिर हैं अल्लाह उन गुनाहों को भी माफ़ फरमा। और ऐ अल्लाह जो दिल के अंदर के गुनाह हैं मेरे मालिक उन गुनाहों को भी माफ़ फरमा। मेरे मालिक हम गुनाहों की नजासत में लिथड़े हुए हैं, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। अल्लाह आपके महबूब ने फरमाया ये रमज़ान रहमत का महीना है, आप अपने बंदों पे रहमत की निगाह डालते हैं और आप उनके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। मेरे मालिक आज की इस रात में अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उम्र बढ़ती जा रही है, बाल सफेद होते जा रहे हैं, अल्लाह दिल स्याह होता जा रहा है। मेरे मालिक इस दिल को पाक फरमा। अल्लाह आपके महबूब ने फरमाया जो ज्यादा इस्तग़फार करता है उसका दिल चमक उठता है। मेरे मालिक हमें भी ज्यादा इस्तग़फार और तौबा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक आपको नाराज नहीं करना चाहते, अल्लाह कमजोर बंदे हैं, अल्लाह तेरे नेक बंदे तो रमजान में नेकियां करके तुझे राजी कर रहे हैं। अल्लाह हम तेरे वो महरूम बंदे हैं जो इस मुबारक महीने में भी गुनाह करके तुझे नाराज कर रहे हैं। ए अल्लाह हमारे लिए गुनाह छोड़ना बड़ा मुश्किल काम हो गया, बदल दे मेरे अल्लाह हमारे लिए गुनाह छोड़ना बड़ा मुश्किल काम, ला आपके लिए छुड़वाना आसान है। मेरे मालिक गुनाहों से पाक जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह रहमत का माल फरमा। अल्लाह जैसा आप हमें देखना चाहते हैं मेरे मालिक हमें वैसा बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मैं नेक ना बन सका, अल्लाह तेरे नेकों में आके बैठ गया हूँ। अल्लाह तेरे नेकों में रमजान की मुबारक रातों में आके बैठ गया हूँ। अल्लाह इन नेकों की बरकत से अल्लाह हमारी रमजान के आखिरी अशरे में और रमजान के मुबारक महीने में रोजेदार जब दुआ के लिए हाथ उठाता है फरिश्तों की जमातें उस दुआ पर आमीन कहती हैं। मेरे मालिक हम आपको उन फरिश्तों की आमीन का वास्ता देते हैं। है अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा अल्लाह उनको भी इन दुआओं में शामिल फरमा। अल्लाह जो दूर बैठे इन दुआओं पे आमीन कह रहे हैं अल्लाह उनके दिलों को भी अपनी याद से मुनव्वर फरमा। अल्लाह इस मुबारक महीने की बरकत से अल्लाह पूरा आलम इस वबा की जद में है, अल्लाह इस वबा से छुटकारा नसीब फरमा। मेरे मालिक अटके हुए कामों का होना आसान फरमा। अल्लाह उलझे हुए कामों को अपनी रहमत से सुलझा। अल्लाह दिल की एक बड़ी तमन्ना है अल्लाह इसे पहले कि मौत आ जाए मेरे मालिक हमें अपनी रजा नसीब फरमा। अल्लाह पहले हमसे राजी होना मेरे मालिक फिर मौत अता करना। अल्लाह पहले राजी होना अल्लाह फिर मौत अता करना। मेरे मालिक करम के फैसले फरमा। अल्लाह हमारे अजीज अकारिब रिश्तेदार मशाइख असातिज़ा वालदेन जो भी इस दुनिया से फौत हो चुके हैं जो हयात हैं अल्लाह उन सब की मगफिरत फरमा। अल्लाह जिनकी मगफिरत फरमा दी अपने कुर्ब के आला दरजात नसीब फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.